Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, एक भवन के निर्माण का कार्य चल रहा था, काफी ऊंची ऊंची मंजिलें बनाई जा रही थी। सुपरवाइजर ऊपर की मंजिल पे था, लगभग पांचवी मंजिल पे, नीचे कुछ मजदूर काम कर रहे थे। सुपरवाइजर को जरूरत पड़ी एक मजदूर की, वो ऊपर से आवाज लगा रहे थे लेकिन वो मजदूर नीचे सुन नहीं रहा था, क्योंकि निर्माण कार्य में आप जानते हैं बहुत शोरगुल का माहौल होता है। बहुत आवाज जब उन्होंने लगाई, नीचे के मजदूर ने नहीं सुना, तो उन्होंने एक युक्ति अपनाई, एक 10 का नोट निकाल के फेंका नीचे। मजदूर के ठीक सामने आके वो 10 का नोट गिरा, मजदूर ने वो उठाया और अपनी जेब में रख लिया और फिर से अपना काम करना शुरू कर दिया। सुपरवाइजर को लगा, अरे यार, इसने तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। उन्होंने 500 का नोट ऊपर से फेंका, फिर से ठीक उसके सामने आके गिरा वो। अब मजदूर ने फिर वही प्रक्रिया दोहराई, 500 का नोट उठाया, अपनी जेब में रख लिया। अब सुपरवाइजर को लगा कि नोटों से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। एक छोटा सा पत्थर उठाया उन्होंने और ऊपर से उसको मारा, ठीक उसके सिर पे जाके लगी वो पत्थर। अब जैसे ही वो पत्थर उसके सिर पे लगा तो उसने ऊपर देखा कि ऊपर से कौन मार रहा है, और फिर उनका संपर्क हो गया। सुपरवाइजर ने उनसे बात करनी शुरू कर दी और जो काम करना था वो किया। मित्रों, ये एक प्रसंग जो है हमारे साथ भी जुड़ता है। कई बार भगवान हमें बहुत सारे सुंदर सुंदर गिफ्ट देते रहते हैं, खुशियाँ देते रहते हैं, छोटी खुशियाँ, बड़ी खुशियाँ लगातार हमें प्राप्त होता रहता है, और हम ये सोचते हैं कि ये हमारे भाग्य से हमें प्राप्त हो रहा है, इन्जॉय करते रहो। हम भगवान को याद नहीं करते, उनका शुक्रिया अदा नहीं करते, इसीलिए कई बार कुछ परिस्थिति रूपी छोटा सा कंकड़ वो हमारे ऊपर फेंक देते हैं। खैर, वो तो नहीं फेंकते, परिस्थितियाँ तो खैर अपने कर्मों से आती हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि चलो उसकी याद दिलाने के लिए कई बार परिस्थिति रूपी कंकड़ ऊपर से फेंक दिया जाता है, तब हमें उसकी याद आती है और हम उसको याद करते हुए परिस्थिति को दूर भगाने के लिए उनसे निवेदन करते हैं। इसीलिए शायद ये कहा गया है कि यदि सुख के दिन हैं तो सुख के दिनों में क्यों ना उसे इतने प्यार से याद किया जाए कि इस कठिनाई, इस परिस्थिति रूपी कंकड़ पत्थर की आवश्यकता ही महसूस ना हो, क्योंकि वो लगातार हमें खुशियाँ देते रहते हैं। ये हमारा भी फर्ज बनता है, हम उन्हें याद करें और दिल से उनका शुक्रिया अदा करते रहें। कई बार अच्छे दिनों में ये बात हम नहीं कर पाते हैं, बुरे दिनों में जब छोटी सी परिस्थिति आती है तब लगातार उनकी याद आने लगती है हमें, लेकिन मित्रों ये जरूर हमें करना चाहिए। दिन कैसे भी हों, अच्छे से अच्छे हों या बुरे से बुरे, अच्छे दिनों में भी हम उन्हें याद जरूर करें, उनका धन्यवाद अदा करते रहें जिन्होंने हमें इस संसार में भेजा है और हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। ऐसे सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं प्रता जी का। प्रता जी, आज के समाधान कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। एक मानवीय नेचर है प्रता जी, पहले भी शायद मैं इस पे आपसे चर्चा कर चुका हूँ, मनुष्य की नियति खुशी के दिनों में उसे याद नहीं आती। हाँ, छोटा सा कंकड़ आया फिर याद आनी शुरू हो जाती है।
और मैं तो ये कहूँगा, अगर मनुष्य सुखों में भगवान को इसलिए थैंक्स देता रहे कि तुमने हमें ये दिया, तो उसके दुख के दिन आएंगे ही नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है सुख में भी उससे अपना नाता जोड़े रखें। और मैं तो ये कहूँगा कि राजयोग का अभ्यास, जो सीधा कनेक्शन है सुप्रीम से, वो तो सुखों के समय ही ज़्यादा अच्छा जुड़ता है, क्योंकि जब मनुष्य दुखी रहता है वो प्रेयर तो कर सकता है, वो कुछ मांग तो सकता है, चिल्ला सकता है, लेकिन वो कनेक्शन नहीं जोड़ पाता है। इसलिए सुखों में भी उससे अपना कनेक्शन जोड़ के रखेंगे तो दुखों में उसकी मदद मिलती रहेगी और हमें पुकारना नहीं पड़ेगा।
लेकिन ये नहीं होता प्रता जी कि सुखों के दिन में जो याद में जो गहराई होनी चाहिए, जो तड़पन होनी चाहिए, जो अपनापन होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। दुखों के दिनों में वो कहीं ज्यादा गहरा होता है।
ये बात केवल याद की है, लेकिन जहाँ योग अभ्यास का प्रश्न है वो बात कुछ दूसरी हो जाती है। उसमें तो हमें परमात्मा से बहुत प्यार जो का नाता जोड़ना होता है, बुद्धि और मन उससे जोड़ देने होते हैं, और दोनों ही बहुत शांत और स्वच्छ होने चाहिए। जब मनुष्य दुखी होता है तो क्या होता है, जैसे मैंने कहा, वो याद तो करेगा शिव बाबा को भी, अपने सुप्रीम फादर को याद करेगा, पर उसकी याद में ये जरूर बना रहेगा कि ये मेरे दुख समाप्त कर दो, तो वो एक मांग जरूर करता रहेगा। जबकि योग अभ्यास में ये मांग नहीं होती, हम उनसे शक्तियाँ लेते हैं और हम बहुत सुखी होते हैं। सच तो ये है, जो एक सच्चा योगी होता है दुख के दिन उसके सामने आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? कि वो दुख को दुख मानता ही नहीं है। दुख में भी वो ऐसे योग अभ्यास के द्वारा अपनी सुखों की फीलिंग बनाए रखता है। और जो एक आम व्यक्ति हैं वो छोटी-छोटी बातों को भी दुख मान बैठते हैं, दुख लेते ज्यादा हैं और फिर दिया भी उनसे ज्यादा जाता है दुख। तो हम अपने एटीट्यूड को ऐसा बना सकते हैं कि दुखों की बात हमें दुख लगे ही नहीं।
ज्ञान के माध्यम से ये चीजें सरल हो जाती हैं। पता जी, एक चीज विशेष करके कई बार भक्ति में भी ये कहा जाता रहा है कि सुख दुख दोनों भगवान ही देते हैं। क्या सचमुच ऐसा होता है कि भगवान ये देखते हैं कि ये बंदा थोड़ा ज्यादा ही मशगूल हो गया है संसार में, तो छोटा सा कंकड़ मार दूं, तो क्या ये भगवान करते हैं?
ये कुछ केसेज में हमारे पास ऐसे केसेज हैं जिनसे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये किया गया या ये होना था तब वो ठीक राह पे आते, अन्यथा भला भगवान का ये कार्य है ही नहीं। वो तो सबकी मुश्किलें सुलझाने वाला है, वो दुख देता ही नहीं। जिससे संसार में भी एक बाप अपने बच्चे को दुख नहीं देना चाहता। चलो कलयुग के अंत की बात छोड़ दें, यहाँ तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन जो परम पिता है, प्यार का सागर है और सुखों का दाता है, वो अपनी किसी भी संतान को कभी दुख नहीं देता है। ये तो मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं प्राप्त करता है। मैं एक उदाहरण बताऊं कि ऐसे कई किस्से आ चुके हैं कि व्यक्ति के जीवन में 6 मास तक बहुत बुरे दिन आए और इतने बुरे दिन आए कि अब वो शांति की तलाश में और कुछ मिल जाए उन्हें धन भी, इसकी तलाश में इधर उधर देखने लगे। आखिर किसी ने उन्हें बता दिया ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, कुछ रास्ता मिल जाएगा। बेचारे आ गए, रास्ता मिल गया, बाबा के बच्चे बन गए, फिर मुझे पत्र लिखते हैं, क्या ये दुख के दिन आने जरूरी थे? तो मैं उन्हें ये कहा करता हूँ, देखिए ये बात भागवत में भी है कि जब भगवान देखता है मेरी ये महान आत्मा, देवकुल की ये महान आत्मा भौतिकता में, सांसारिक सुखों में, विषय विकारों में इतनी रत हो गई है कि मेरी ओर तो देखती नहीं, और अब इसे मुझे देवता बनाना है, उसको ये इच्छा बिल्कुल नहीं कि ये मेरी ओर देखें, पर उसे इनको देवता बनाना था। तो ऐसे दिन आए कि अब ये तलाश करने लगे कि भाई इसमें कुछ नहीं है, कुछ और ढूंढो, और आ गए बाबा के पास। तो मैं उनसे यही पूछा करता हूँ, देखो वो बुरे दिन तुम्हारे जीवन में ना आते तो ये प्रभु मिलन के दिन भी ना आते। अगर तुम उन्हीं सुख सुविधाओं में रहना चाहते हो, प्रभु मिलन तुम्हारा नहीं होगा। तो लोग उत्तर देते, नहीं, जो कुछ भी हुआ उसको छोड़ो, हमें तो प्रभु मिलन चाहिए। तो ऐसा है जरूर कि इस समय जब भगवान देखते हैं कि देवकुल की बहुत सारी आत्माएं मोह माया में लिप्त हो गई हैं और उन्हें अपने देवत्व का बिल्कुल आभास नहीं है, वो सत्यता से दूर होती जा रही हैं और इसको ही सत्य मान रही हैं जो कुछ उन्हें दिख रहा है, तो वो जरा ऐसा कुछ कर देता है कि आ जाओ।
खैर बेटा जी, लगता तो खैर ऐसा है कि लोगों को ये लगता है कि एक ऐसी दुखद बातें हो गई, लेकिन इसके पीछे जो आप कह रहे हैं कितना सुंदर रहस्य है कि वो भगवान के पास आ जाते हैं। तो आजकल ये देखा जाता है कि हरेक, जैसे कल या परसों भी हम चर्चा कर रहे थे कि एक परिधि हरेक ने बना ली है अपने लिए और उसी में लिप्त हो गया कि यही मेरे लिए जीवन है। तो अब भगवान को यदि सबको अपने पास बुलाना है, मतलब अच्छा ज्ञान देने के लिए, उनका जीवन सुखमय बनाने के लिए, तो क्या एक एक पत्थर नहीं मार देना चाहिए सबको?
नहीं, वो सबको नहीं मारता, कहीं उसे घायल भी हो सकते हैं कि हम भगवान की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसे कोई पत्थर थोड़ा सा मारता है जो उसको ठीक ढंग से पहचानते हैं कि उसने ये क्यों किया, और जिनके मन में एक सत्य की खोज होती है, एक अलौकिक चीज की तलाश रहती है, तो बस वो उस मार्ग पे आ जाते हैं और वो बहुत सुखी हो जाते हैं।
बिल्कुल, मतलब वो जो कहा जाता है कि ज्ञान भी पात्र को दिया जाए, तो शायद बात ये वाली आ जाती है, और शायद उनके कर्म भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। दादा जी, मेल्स की ओर लिए चलता हूँ आपको। आज जो हमारे पास मेल आए हैं, इनमें से पहला मेल दादा जी पुणे से आया है। ये कहते हैं, डियर सूर्य भाई जी, आई लाइक योर प्रोग्राम वेरी मच। Presently, I am pursuing my PhD in civil engineering. I want to ask how to concentrate on research work and how to improve it. Please guide me. Mahesh ji hain brata ji, Pune se. बड़ा मुश्किल का काम होता है PhD करना, रिसर्च वर्क करना, फोकस करना।
इंजीनियरिंग में, तो काफी मेहनत की बात होती है। लिटरेचर में तो लोग कुछ भी सहज कर लेते हैं। इनको बहुत एक स्वच्छ और क्लीन इंटेलेक्ट की जरूरत पड़ती है, ताकि इन्हें वो कार्य मेहनत का ना लगे। जो भी प्रोजेक्ट ये बनाएं, जो भी रिसर्च वर्क करें, वो सहज इनका होते रहे। इसलिए इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए इन्हें विशेष योग अभ्यास पे ध्यान देना होगा। मैं इन्हें राय दूंगा कि ये सवेरे उठकर बहुत अच्छा योग अभ्यास करें, मन को एकदम शांत करें, तो इनकी बुद्धि में जो सुंदर बातें मर्ज हैं वो इमर्ज होने लगेंगी। देखिए, जो ज्ञानी हैं वो जानते हैं कि कल पहले भी इन्होंने PhD की थी, तो वो सब कुछ इनके अंतर मन में भरा हुआ है, उसको केवल जागृत करना है। तो सवेरे उठकर बहुत अच्छा मेडिटेशन करेंगे एकाग्रता से, एक तो ये बात। दूसरा, सवेरे उठकर ये अपने को चार्ज करें इन संकल्पों से, मैं भगवान की संतान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं मास्टर सर शक्तिवान हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैंने तो ये कल्प कल्प ये सुंदर कार्य किया है, अब भी मेरे लिए ये काम बिल्कुल सहज है, आई विल एंजॉय दिस वर्क। ऐसे ऐसे सुंदर संकल्पों के साथ वो अपने को मोटिवेट करें, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएं। लेकिन मेडिटेशन के द्वारा इनके रिसर्च वर्क में इनको बहुत मदद मिल जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम भी कामना करेंगे ब्रता जी, महेश जी को जल्दी से जल्दी सफलता मिले। लेकिन एक बात जो आपने कही ब्रता जी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पिछले कई दिनों से मैं एक प्रश्न आपसे किया करता था कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है तो इसका क्या बेनिफिट है। आज एक बात आपने कही तो मेरे मन में वो बात आ गई कि कल पहले भी अर्थात 5000 वर्ष पहले भी मैंने ये किया था, तो अब ये कार्य मैं सहज रूप से कर सकता हूँ। शायद इस ढंग से यदि इस ड्रामा के चक्र को लिया जाए तो सचमुच बहुत बेनिफिट हो सकता है।
और ये क्योंकि हमने ये साइकिल अनेक बार प्ले किया है ये पार्ट, तो वो सब चीजें हमारे अंदर हैं। और ये जो हमारा अध्यात्म है, स्वमान है, स्मृतियां हैं, योग अभ्यास है, इनसे वो संस्कार हमारे जागृत होते रहते हैं और हमारी आगे की यात्रा बिल्कुल सरल हो जाती है।
बिल्कुल, मतलब अच्छाइयां बहुत सारी रही हैं इस पूरे चक्र में जो हमारे साथ घटित हुई हैं, लेकिन शायद हम प्रेजेंट या पास्ट के दो चार बर्थ को ही देखते हैं और उन बुराइयों के कारण हम बहुत दुखी रहते हैं।
बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, सतयुग त्रेता के बाद द्वापर युग भी तुम्हारा बहुत सुंदर बीता है, बहुत चरित्रवान थे तुम, बहुत संपन्न थे, ये मनोविकार तुम्हारे अंदर बहुत निमित्त मात्र थे, बहुत ज्यादा थे नहीं, मनुष्य के अंदर बहुत संतोष था, वो धन के पीछे भाग नहीं रहा था और मॉरल वैल्यूज से भी वो भरपूर था। कलयुग का भी बहुत सारा हिस्सा सुंदर बीता, हाफ के बाद ये सब गिरावट आई, इसलिए अच्छाइयां बहुत ज्यादा हैं, हम कह सकते हैं more than 70% अच्छाइयां हैं, थोड़ी सी बुराई वो भी कलयुग के अंत में आकर हुई है। तो अगर मनुष्य उन चीजों को जागृत कर ले तो इन बुराइयों पर विजय पाना बिल्कुल खेल हो जाए।
बिल्कुल, और उसको आनंद भी आएगा कि हूबहू मतलब फिर से मैं बहुत अच्छे से देवता बनूंगा या फिर से मुझे बहुत सारी प्राप्तियां होंगी, शायद ये याद करेगा तो उसको ज्यादा खुशी होगी, कमियों को या जो थोड़ी बहुत ये दुख के वातावरण रहे हैं उनको वो याद ना करें। अगला हमारे पास आया ब्रता जी, जो मेल है ये कहते हैं कि मेरे अंदर मौत का जो भय है वो बचपन से ही समाया हुआ है कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए, और वही चीज मुझे स्वप्न में भी आ जाती है और यदा कदा वो मुझे डराती रहती है। ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जैसे बहुत गहराई से समा गई है। मैं राज्यों का अभ्यास भी करता हूँ लेकिन इस चीज से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, और शायद इसी कारण मैं अब हाई BP और सुगर का भी पेशेंट हो गया हूँ। कृपया बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ। एलोपैथ मेडिसिन मैंने ली है लेकिन उसका भी कोई प्रभाव अब तक पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे इस मौत के भय को मैं अपने अंदर से निकालूं?
मौत के भय की कोई मेडिसिन नहीं होती, इसकी रेमेडी तो है आत्म जागृति। इस और ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले किसी जन्म में या एक दो तीन जन्मों में इसे मृत्यु ने बहुत कष्ट दिया है, वो भय सबकॉन्शियस माइंड में तबका भरा हुआ है और वो इतना एक्टिव हो जाता है, किसी की भी ये मृत्यु देखता होगा ना, अब मृत्यु तो होती ही रहती है, तो वो सब एक्टिव हो जाता है और ये उस भय से पूरी तरह ग्रस्त हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि राजयोग के पथ पर आ गए हैं, इसलिए मैं इनको कहूंगा ज्यादा दिन नहीं, 21 दिन एक बहुत अच्छी धुन लगा देंगे, मैं आत्मा अविनाशी अजर अमर चैतन्य बहुत पावरफुल, मैं मरती ही नहीं, मैं तो बिल्कुल चेतन हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मेरी मृत्यु होती ही नहीं, अपने इस स्वरूप को ये देखने लगे। साथ में इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन भी करना है, सवेरे उठते जैसे ये योग युक्त हो तो इस संकल्प को फिर से दोहरा दे कि मृत्यु तो और कुछ नहीं, देह रूपी वस्त्र उतारने का नाम है, मैं ये देह रूपी वस्त्र खुशी खुशी स्वेच्छा से उतार दूंगा, मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, तो वो क्लीन होता रहेगा। इसके सबकॉन्शियस माइंड में जो छप गया है वो क्लीन होता रहेगा। साथ साथ ये योग अभ्यास पे बहुत ध्यान दे। जैसे मैंने कहा पिछली बातों के उत्तर में, मैंने कहा कि ऐसे मनुष्य को ज्ञान में बहुत वृद्धि करनी चाहिए। डेली सेवा केंद्र पर जाना, ईश्वरीय महावाक्य सुनना, माँ की सेवाओं में सहभागी बनना, इससे वो चीज भूलती जाएगी और इसको याद रहने लगेगा कि मृत्यु कोई ऐसा थोड़े रोज रोज आनी है, आई थी फिर जब आएगी तब तक के अपने जीवन को मुझे एंजॉय करना है। एक चीज जो सबके लिए अनिवार्य है, जो सबकी हो रही है, रोज देखो कई लाख लोगों की मृत्यु हो रही है, तो एक अनिवार्य चीज के लिए मैं इतना परेशान नहीं होऊंगा। संकल्प कर लें, अपने से बात करें, ये मृत्यु कुछ नहीं है, ये तो देह परिवर्तन का नाम है, मृत्यु को मैं एंजॉय करूंगा और ये तो एक नेचुरल चीज है। इस तरह के जो विचार भय के इसके अंदर आ गए उनको ये चेंज करता चले। साथ में फिर सवेरे उठकर भी, सोने से पहले भी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ, सात सात बार अवश्य याद करें, तो ये सटिल भय इनके सबकॉन्शियस माइंड से नष्ट हो जाएगा।
बिल्कुल। और ये जो एक इनको बीमारी आ गई है ब्राता जी, ये सोच सोच के कि अब इनका बीपी हाई रहने लगा है, या इनको शुगर हो गई है, शायद इसी कारण सोच सोच के
कुछ दिन तक इनको मेडिटेशन पे और ध्यान दे देना है। आधा आधा घंटा तीन चार बार ये कर लें, क्योंकि ये इनके लिए इम्पोर्टेंट चीज है। इस पे तो डिपेंड करता है इनका पूरे जीवन का सुख। इसलिए सवेरे आधा घंटा बैठ जाए, फिर सेवा केंद्र पे जाए, आधा घंटा योग वहाँ कर ले, फिर अपने काम काज के अनुसार दिन में या इवनिंग में आधा घंटा योग करे, फिर सोने से पहले करे, तो ये अपने अंदर योग की शक्ति बढ़ाएं। योग की शक्ति से मन की शक्तियाँ बढ़ती हैं, विल पावर बढ़ती है, और ये सब चीजें फिर सहज हो जाती हैं।
बिल्कुल, मतलब योग करने से ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, मृत्यु का भय भी। एक और हम लोगों ने ब्रता जी से जुड़ी हुई चर्चा की थी कि कईयों को अपने मृत्यु का भय नहीं लेकिन अपने परिजनों की मृत्यु का भय बहुत सताता है। आंखें खुली और वही विचार आया दिन में भी कभी भी कि कहीं माँ ना चली जाए, पिताजी।
हाँ, ये भय आजकल युवकों में बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब रोज एक केस तो ऐसा आ ही जाता है कि वो भयभीत है, बच्चे भयभीत है, एग्जाम से भयभीत हैं, बिना कारण भयभीत हैं, अपने घर में अकेले हो गए तो डर लग रहा है, कहीं से किसी ने नोक भी कर दिया तो डर लग रहा है। तो ये सब भय जो है मनुष्य के अंदर मनोविकारों के कारण भी आया है। देखिए, दो चीजों ने मनुष्य को बहुत डराया है, वो मृत्यु की बात तो है ही, एक पाप ने बहुत डराया है, दूसरा मनोविकारों ने बहुत डराया है। मनुष्य इन दोनों को ही समझता नहीं है, लेकिन ये मनुष्य की शक्ति को इतना कमजोर कर के भयभीत कर देती हैं कि इससे फिर बाहर निकलना बहुत कठिन काम होता है। इसलिए इनको योग अभ्यास पे विशेष ध्यान देना ही चाहिए।
जी जी जी, चलिए हम भी कामना करेंगे ब्राता जी कि जल्दी से जल्दी ये इससे मुक्त हो जाएं और सहज रूप से जीवन का आनंद लें, क्योंकि जिसे ये लग रहा हो कि कहीं कल ही मेरी मृत्यु न हो जाए वो शायद जीवन का आनंद नहीं ले पाएगा। अगला हमारे पास पूनम जी का है ब्राता जी मेल। ये कहती है, ओम शांति भाई जी, मैं लास्ट 2 ईयर से ज्ञान में हूँ और अच्छा योग करते थे, लास्ट कुछ दिनों से मेरा योग नहीं लग रहा है और न ही बाबा का ज्ञान अच्छा लग रहा है। मैं एक महान आत्मा हूँ, 108 बार मैं लिखना भी चाहती हूँ, लिखती भी थी, लेकिन अब इसमें भी मेरी रुचि नहीं हो रही है। मास्टर सर्वशक्तिवान, ये भी मैं कई बार रटती हूँ लेकिन फिर भी अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है। मैं खुद को देख कर मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब ब्राता जी, ज्ञान भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये योग के अभ्यास भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, कारण क्या है समझ में?
कई बार मनुष्यों में एक सर्टेन एज आने पर हार्मोन्स का परिवर्तन बहुत होता है, उससे ये देखा गया बहुत युवकों की मनोस्थिति ऐसी बन जाती है, बिल्कुल वो भाग जाना चाहते हैं पढ़ाई से या किसी से, उनको कहीं रुचि नहीं होती है। ज्ञान योग जिसमें वो बहुत एक्सपर्ट थे वो फीका लगने लगता है, वैराग उससे भी आने लगता है, जीवन में सूखापन आने लगता है। ऐसे में उनके किसी साथी को उनकी मदद करनी चाहिए। देखिए, ऐसे में मनुष्य खुद कुछ नहीं कर पाता है, जरूर ऐसे में कोई फ्रेंड अपने होने चाहिए जिससे ये बात हम शेयर भी कर सके और एक सुंदर समाधान भी हमें मिल सके। तो इन्हें पहला काम करना है पानी चार्ज करके पीना। पानी तो इनको पीना ही है, उसमें तो रुचि है, रुचि की बात नहीं। तो ये चार्ज करें पानी को, पानी को दृष्टि देके सात बार संकल्प करें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, या अपनी माँ से ये इसकी मदद लें, या कोई फ्रेंड हो इनका वो इनको मदद करे, और फिर ये ब्रेन को भी 10 मिनट एनर्जी दें रोज।
एक मिनट रहते जी, मैं रोकना चाहूंगा। कई बार यदि अरुचि हो रही है, मेरी इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी मैं जबरदस्ती एक तो ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो भी क्या इसका इफेक्ट होगा?
नहीं, देखिए इफेक्ट तो इसका होगा, क्योंकि ये तो जैसे मेडिसिन है, पानी चार्ज कर लिया वो पिया तो वो तो अंदर गया और वो हार्मोन्स को बैलेंस में लाएगा ही। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर इनकी माँ या फ्रेंड कोई करती है इनके लिए तो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो ब्रेन को एनर्जी दें, पानी चार्ज करके पिए, और लिखने की जो बात थी 108 बार ये नहीं लिखे, 21 बार लिखें बस, धीरे धीरे रुचि फिर से जागृत हो जाएगी, और हो सके तो किसी होम्योपैथी डॉक्टर से भी बात कर ली इसके बारे में। एलोपैथी में भी इसकी दवाई अवश्य है, पर जिसको जो रुचि हो, जो पसंद हो, थोड़ा मेडिसिन की भी सहयोग ले लेनी चाहिए।
कई बार ऐसी कंडीशन में मैंने देखा है व्रता जी, कि जब कभी ऐसी रुचि नहीं होती है इन सब चीजों में, और व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता, कई केसेस जो फोन कॉल्स के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा मैंने देखे हैं, वो नशे की ओर बढ़ने लगते हैं, कि वो नशा कर लें, अब कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो जो क्षणिक नशे की स्थिति है जो उनको सुख देता है, वहां वो चले जाते हैं, या फिर कहीं और गलत संग में चले जाते हैं। तो यहाँ फिर अपने आप को कैसे रोकें, क्योंकि उनको कुछ चाहिए तो सही, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है तो कहीं और सही, ये स्थिति भी बहुतों की बनती हुई।
देखिए ये हमारे सभी युवकों को अवेयरनेस होनी चाहिए, मतलब ये एक संकल्प ही होना चाहिए कि नशे की जो राह है वो तो हमें पकड़नी नहीं है। साथ में ये भी याद रखना चाहिए कि ये ऐसे दिन मनुष्य के सामने आते हैं और गुजर जाते हैं, फिर सुंदर दिन आ जाते हैं, तो हमें कहीं फिसल नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत पछताना होगा। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों की भी कहानी सुनता हूँ कि काफी आयु बड़ी हो गई और हार्मोन्स का अंदर परिवर्तन होने लगा, एकदम मनोस्थिति बिगड़ गई, अब वो इतनी दुविधा में, अब करूं क्या, मेरी बहुत बड़ी आयु हो गई, कैसे काम चलेगा। लेकिन फिर कुछ अभ्यास करने से, जैसे मैंने कहा कोई फ्रेंड ऐसा अवश्य होना चाहिए जो उनको इस टाइम मदद करे, तो इस दुविधा से निकल
जाए। हम भी उम्मीद और आशा के दीप लगातार जलाने की कोशिश करते रहते हैं कि सभी अंधेरे से बाहर निकल के आए, और इस प्रयास में आप हमेशा ही हमारा साथ देते हैं, योगदान देते हैं। आज की सुंदर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जीवन में परिस्थितियां, बाधाएं, समस्याएं तो हैं ही। जैसे लास्ट वाली बात लें, उसे पहले की बात लें, कि मृत्यु ना हो जाए, फियर ऑफ डेथ की बात है, या फिर हम बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, कई बार अकेले हो जाते हैं, तो कुछ ऐसी राह पकड़ लेते हैं जहां से कई बार बाहर आना ना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। इसीलिए जब भी कोई रास्ता चुने, कहीं आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर रुकें और उसके बाद विचार करें कि ये रास्ता फाइनली मुझे कहाँ लेकर के जाएगा। मैं मानता हूँ कि एक ऐसी एज होती है जहाँ हम ये सब चीजें नहीं सोचते, यार यार जो होगा देखा जाएगा, चलो आगे बढ़ो, फिलहाल मुझे सुख और शांति तो मिल रही है, आनंद तो मिल रहा है, ये हम सोच लेते हैं। लेकिन कई बार इतनी गहराई में उतर जाते हैं इस दलदल में, जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जरूर सोचें कहीं भी आगे बढ़ने से पहले कि इसका एंड रिजल्ट क्या है, ये मुझे कहाँ लेके जाएगा। और यदि आप वहां पहुंच भी चुके हैं, राजयोग एक सुंदर साधन है मित्रों, जहां से हम अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं, अपने आप को मदद कर सकते हैं। बहुत सारे सेवा केंद्र हैं, ब्रता जी कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, ब्रह्मा कुमारीज के, जहां लगातार ये सुंदर ज्ञान की बातें या राजयोग का अभ्यास कराया जाता है, जिसके द्वारा आप अपनी बुराइयों से भी मुक्त हो सकते हैं और जीवन को खुशहाल और आनंदित बना सकते हैं। हमारा समाधान का लगातार प्रयास रहता है कि आपका जीवन बहुत सुंदर हो, श्रेष्ठ हो, सुखमय हो, आप समाज के भी काम आए और परिवार को भी आप पे गर्व हो। उम्मीद है कि इन सभी बातों पे आप विचार करेंगे, सुंदर मार्ग पे चलेंगे, और यदि मार्ग कहीं परिवर्तित हो गया है, वापस आएंगे और श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं, कल पुनः मुलाकात होगी, आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।